ये है 12 पुष्प मुद्दों का प्रातः क्लास। ओम शांति, ये किसने कहा? बाबा ने कहा। ओम शांति बाबा ने कहा या दादा ने कहा? अब तुम बच्चों ने ये पहचाना है? ऊंच से ऊंच की महिमा तो बहुत भारी है। ओम शांति किसने कहा? बाबा ने कहा या दादा ने कहा? दादा ने कहा, बाबा ने नहीं कहा, दोनों ने कहा। बाबा किसे कहा जाता है और दादा किसे कहा जाता है? बाबा किसे कहा जाता है और दादा किसे कहा जाता है? बाप दादा, तो तीसरा शब्द और हो गया। दादा माने ब्रह्मा बाबा, माना बड़ा भाई को दादा कहा जाता है। और बाबा शिव बाबा, शिव ज्योति बिंदु है। शिव ज्योति बिंदु तो है बाप, वो बाबा नहीं है, वो सिर्फ बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। बाबा ने, बाबा ने उसे ग्रैंड फादर, तो आत्माओं का बाप के साथ कोई तीसरा संबंध नहीं बनता। क्लास दूसरे संबंध कब बनते हैं? जब किसी साकार शरीर में प्रवेश करते हैं तो ग्रैंड फादर हो जाता है बाबा। तो किसने कहा? ब्रह्मा बाबा ने कहा। क्योंकि ब्रह्मा को भी बाबा कहा जाता है, क्योंकि बुजुर्गों को क्या कहते? बाबा। बाकी कोई ब्रह्मा हमारा बाबा नहीं है, है तो दादा, बड़ा भाई, लेकिन बाबा किसने कहते? ओल्ड, बुजुर्ग होने की बात नाते। तो ओम शांति किसने कहा? आत्मा, कौन सी आत्मा? शिव बाबा ने कहा और ब्रह्मा दादा की आत्मा भी सोल ने कहा, दोनों ने ही ओम शांति कहा। ओम शांति का मतलब मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा कौन? ओम क्यों कहा? ओम का अर्थ आत्मा क्यों? ओम का अर्थ आत्मा क्यों? क्योंकि आत्मा कर्तव्य करती है, उसके आधार पर नाम पड़ा ओम। क्या कर्तव्य करती है? आ ऊ म, आ ऊ म, ओ आ ऊ म, ओ, तीन कर्तव्य करती है। आ मीन्स ब्रह्मा, ब्रह्मा का आ, विष्णु, विष्णु का ऊ, महेश का म, ये तीन अक्षरों से मिलकर के बना है ओ। तो तीन अक्षरों का अर्थ है स्थापना, पालना और बिना। ये तीन कर्तव्य करने वाले को क्या कहा जाता है? आत्मा। सब आत्माओं की ये तीन कर्तव्य क्या? स्थापना, पालना और बिना। अरे क्या बात, परमात्मा की ये तीन कर्तव्य है कि आत्मा के भी तीन कर्तव्य है? परमात्मा का तो कर्तव्य है ही है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा बिना, लेकिन आत्मा के भी तीन कर्तव्य, तो उन तीन कर्तव्यों के आधार पर जैसा जिसका काम वैसा उसका नाम। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ माने तीनों ही कर्तव्यों के, चाहे ब्रह्मा के कर्तव्य में, चाहे विष्णु के कर्तव्य में, चाहे शंकर के कर्तव्य में, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अशांत होने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। परमात्मा के भी ये तीन कर्तव्य, तीन कार्यकर्ता उसके भी है। जैसे आत्माओं के तीन कार्यकर्ता कौन है? आत्मा के तीन कार्यकर्ता कौन है? मन, बुद्धि और संस्कार, ये आत्मा के तीन कार्यकर्ता है। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का काम है नहीं, और विष्णु संस्कार, संस्कार शक्ति यानी परिवर्तन शक्ति, उस किसका काम है? विष्णु। तो हर आत्मा में ये तीन कार्यकर्ता बैठते हुए, आत्मा की ये तीन कार्यकर्ता है तो आत्मा एक ही, लेकिन जैसे कोई जज होता है अपनी कुर्सी पे बैठा है कोर्ट में तो जज है, घर में आया तो पापा है, दादा है, और क्लब में गया तो फ्रेंड है, एक ही आदमी और तीन कर्तव्य, तो नाम अलग अलग हो गए। उसी तरीके से आत्मा के भी तीन कार्यकर्ता, यानी आत्मा तीन रूपों में कार्य करती है, मन, बुद्धि और संस्कार, और परमात्मा के भी तीन कार्यकर्ता कौन? तीन कार्यकर्ता कौन? परमात्मा के ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। तो ब्रह्मा हुआ, ब्रह्मा के संकल्प से शक्ति रखी गई तो संकल्प शक्ति हो गई, ब्रह्मा के संकल्प से शक्ति रखी गई तो संकल्प मात्र, ये कितने की बात है? ब्रह्मा के संकल्प मात्र से शक्ति रखी गई ये कितने की बात है? संगम युग में भी कितने की, आज की अंत की, आज की, आज में संकल्प से शक्ति रखी गई मध्य की है, चलो आज की नहीं होगी तो मध्य की होगी, हाँ अंत की। जब ब्रह्मा के 100 साल पूरे होते हैं, 36 में प्रवेश था, तो 60 ईयर वन प्रति अवस्था आज ब्रह्मा, और उसमें 40 ईयर और ऐड किए तो कौन सा वर्ष आया? 76। 76 में ब्रह्मा की 100 ईयर आयु पूरी होती है। तो जब संपूर्ण ब्रह्मा बनता है तो संकल्प शक्ति से भी कैसा बन जाता है? संपूर्ण। तो उस स्टेज में ब्रह्मा जो संकल्प करेगा कॉन्सेंट्रेशन से, वो संकल्प सिद्ध होगा। तो 76 से ब्रह्मा के द्वारा मानसिक शक्ति रखी जाती है, इसलिए शास्त्रों में गायन है ब्रह्मा ने सबसे पहले मानसिक शक्ति रखी। कौन पैदा हुई है? कौन मनी? मानसिक शक्ति से मनी से पैदा हुए। कौन से मणि से पैदा हुए? क्या नाम था उनका? कहते हैं मानसिक शक्ति से ब्रह्मा द्वारा पहले पहले 4 पुत्र उत्पन्न हुए, कनक, सनातन, सनंदन, सनक कुमार।
बताया गया या भागवत में महाभारत में उनको कृष्ण और कृष्ण के सखाओं के रूप में बताया गया क्योंकि तो शास्त्रों में बात है तो सब इसी समय की अलग अलग शास्त्र बनाए दिए हैं तो ब्रह्मा द्वारा मान की शक्ति रहती गई ब्रह्मा भी दोष प्रवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति मार्ग है तो ब्रह्मा भी दो एक ऊपर वाला एक नीचे वाला ऊपर वाला ब्रह्मा अव्यक्त ब्रह्मा ऊंचे स्टेज वाला जैसे बाबा मुर्मी में कहते हैं कि बाप होता है निराकारी और माँ होती है साकारी तो ब्रह्मा भी दो हो गए एक अव्यक्त स्टेज में रहने वाला ब्रह्मा अव्यक्त स्टेज में रहने वाला मन ऐसे नहीं कि कोई ऊपर सूक्ष्म बदल रहे नहीं जैसे हम बच्चों को अव्यक्त बाप दादा ने डायरेक्शन दिया बच्चे घड़ी घड़ी प्रैक्टिस करो क्या प्रैक्टिस करो साकारी आकारी और निराकारी स्टेज को धारण करो अभी अभी साकारी बनो अभी अभी आकारी मन चिंतन मंथन की स्टेज में मत हो जाओ ये भी आकारी स्टेज और अभी अभी निराकारी मन निराकारी स्टेज का मतलब क्या हुआ बिंदु रूप स्टेज का मतलब क्या हुआ निश्चिंतन जैसे आकारी स्टेज में मन चिंतन मंथन की स्टेज रहती है नई दुनिया कैसे बनेगी सब इसके प्लान चलते हैं वो सब बंद हो जाए दुनिया के भी संकल्प न चले साकार दुनिया की और जो नई दुनिया बनने वाली है उसके भी कोई संकल्प न चले बिंदु मैं आत्मा और हम आत्माओं का पाप सुप्रीम से ज्योति बिंदु से ये हुई कौन सी स्टेज निराकारी बिंदु रूप स्टेज निसंकल्प स्टेज जिसमें पाप कर्म बड़ी तेजी से भस्म होते तीन अवस्थाएं धारण करने के लिए अगर तो बाप दादा ने हमको डायरेक्शन दिया तो कोई बच्चे तो ऐसे होंगे जो इसकी प्रैक्टिस करने वाले होंगे और उन बच्चों में परसेंटेज ही होंगे ऐसे तो नहीं सब एक जल्दी परसेंटेज वाले होंगे कोई बच्चा बाप के बताए हुए टाइम की लिमिट नहीं वो बाप का टाइम का लिमिट बाबा ने क्या बताया था उसको बताया था पहले से घोषणा करा दी 66 में आने वाले 10 वर्षों में भारत के भ्रष्टाचार और विकारों का अंत होने वाला है तो इसका मतलब बाबा ने तो पहले ही बता दिया कि उस स्टेज में टिकने वाली पहली आत्मा को तैयार 76 में होनी जो एक घड़ी में आकारी वो तो एक घड़ी में साकारी और उसी एक घड़ी में निराकारी स्टेज में टिक जाए चाहे तो अब हम तो ये जब जानते हैं कि हम आत्मा रूपी बच्चों के बीच में जो जनमन के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं उन मनुष्य आत्माओं के बीच में सबसे जाति पुरुषार की आत्माएं कौन सी है शिव पुरुषार की राम और कृष्ण की आत्मा हमारी भारतीय परंपरा में नहीं लेकिन दूसरे ग्रंथों में दूसरे धर्मों में भी उन दो आत्माओं का विशेष रूप में गायन हर धर्म में उनकी मान्यता है भारतवर्ष में तो राम कृष्ण के रूप में मान्यता है ही दूसरे ग्रंथों में किस रूप में मान्यता है हर धर्म के लोग उनको मानते हैं सिर्फ नाम रूप अलग कर दिया कौन से नाम रूपों एडम ईव आदम और हवा तो आदम और हवा एडम और ईव आदिदेव और आदिदेवी ये कोई यज्ञ के आदि में अथवा यज्ञ के मध्य में नहीं तैयार होते क्योंकि जितनी भी मूर्तियां हैं वो संपन्न स्टेज की मूर्तियां हैं अधूरे ब्राह्मणत्व की मूर्तियां नहीं बनती न उस की पूजा होती है, पूजा होती है प्योरिटी की पावर की, प्योरिटी के आधार पर पूजा होती है मंदिरों में, मंदिर बनाए जाते हैं, यादगार बनती है, चित्र बनते हैं, तो संपूर्णता के देवताओं के चित्र बने हुए, तो सूक्ष्म बतन में जो देवताएं हैं ब्रह्मा विष्णु और शंकर, जिनकी सृष्टि पर मूर्तियां रखी हुई है, उनकी पूजा का आधार क्या है? तो इन्होंने ये संपूर्ण प्योरिटी की स्टेज को कब धारण किया? संगम पर धारण किया, और संगम में भी वो पीरियड है 76। इसलिए अगस्त बाप दादा ने कहा कि माँ बाप के अलावा और कोई चीज फिक्स नहीं हुई, दो मन के फिक्स है। अभी तो कुछ वर्षों से बोलने लगे हैं कि तीन चीज, दो तीन चीज के अलावा और कोई चीज फिक्स नहीं है, इसका मतलब तीसरी चीज भी फिक्स होने जा रही है। तो 76 में कोई आत्मा ऐसी तैयार हो जाती है जिनके लिए वायु में पहले से ही बाबा ने डिक्लेरेशन दिया हुआ है। बाबा ने बोला इन्हें लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? ब्रह्मा बाबा जब जीवित थे उनके तन में शिव बाबा आते थे, उसी समय ये महावाक्य बोला गया। इन्हें लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए, ब्रह्मा बाबा के समय की वाणी है, यानी 68 से पहले की ही वाणी होगी, और 10 वर्ष की बात करते हैं बाबा 67 से या 66 से, तो 66 में से 5000 वर्ष अगर पीछे की तरफ जाए, 5000 या पीछे की तरफ जाए, तो कौन सा वर्ष आएगा? इसकी सिक्स में अगर 5000 ईयर तक जाए तो कौन सा वर्ष आएगा? 5000 ईयर तक नहीं। अच्छा चलो 66 की बात छोड़ दीजिए, 92 चल रहा है, और 92 में ये कहा जाए कि आज से 5000 वर्ष पहले कौन सा सन था, तो कौन सा सन हुआ? 92 हुआ ना, तो 66 में बाबा ने बोला आज से 5000 वर्ष पूर्व, तो कौन सा वर्ष हुआ? 76 92 में अगर आज कहते हैं कि आज से 5000 वर्ष पहले कौन सा सन था, 92, तो 66 में ये बात बोली गई कि लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 5000 वर्ष पूर्व, तो कौन सा वर्ष आया? अरे आज से 5000 वर्ष पूर्व नहीं, अभी तुम 5000 वर्ष पूर्व कह रहे हैं, तो 66 से 5000 वर्ष पूर्व कितना हुआ? 66 हुआ, अब उसमें 10 ईयर लेस कर दिया जाए, 5000 वर्ष में से 10 ईयर लेस किया जाए, कम कर दिया जाए, तो कौन सा सन आएगा? नहीं, 10 ईयर एड किया जाएगा, 510 ईयर, तो 66 आएगा, बैक टाइम में जाना ना, और 10 ईयर लेस करना है तो 76 आएगा, ये चक्र है। अब यहाँ से लेकर के अब हम उल्टा कर रहे हैं 5000 वर्ष, तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचे, यहाँ तक रह गए, लेस कर दो, तो लेस करेंगे तो बढ़ेगा या कम होगा? 76 होगा या 66 होगा? 66 होगा, टाइम किसे छोड़ जाएगा ना। हाँ जी, बाबा ने घुमा के बोल दिया है छोटी सी बात। बाबा ने बोला लक्ष्मीनारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। हाँ, 10 ईयर्स लेफ्ट, 5000 ईयर्स बैक। तो 76 में लक्ष्मीनारायण का जन्म हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि जो लक्ष्मीनारायण बनने वाली आत्माएं हैं वो 36 से पुरुषार्थ आरंभ करती है और 76 तक आते आते उनका संपन्न छेद तैयार हो जाता है। और 76 में वो आत्माएं अपना प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले लेती है। या कोई स्थूल जन्म नहीं होना है, या तो दिव्य जन्म है। बाप का भी दिव्य जन्म, तो हम बच्चों का भी दिव्य जन्म। कोई गर्भ से जन्म लेने की बात नहीं है, यहाँ है देवताओं के प्रत्यक्ष होने की बात। जैसे गर्भ में बच्चा होता है, बाहर आता है, तो संसार में प्रत्यक्ष हुआ ना। तो ऐसे ही ये आत्माएं जो अपना संपन्न स्वरूप संसार में प्रत्यक्ष करना शुरू करती है वो उनकी प्रत्यक्षता रूपी जन्म की बात कही जाती है। ये है प्रत्यक्षता रूपी जन्म। तो लक्ष्मीनारायण का जन्म कब हुआ बाबा की कसम? 76। तो ये आत्माएं उस समय प्रत्यक्ष हो गए। तो ब्रह्मा वो हो गए क्या? ब्रह्मा वो हुए एक अव्यक्त स्टेज वाला ब्रह्मा और एक व्यक्त स्टेज वाला ब्रह्मा। तो अव्यक्त स्टेज वाला ब्रह्मा वो कौन सी आत्मा है? राम वाली आत्मा, जिसके तन में पहले से बाबा ने प्रवेश करके यज्ञ के आग में ब्रह्मा के भी पार्ट को खोला कि तुमको कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, इसका मतलब तुम कृष्ण के रूप में भविष्य में सतयुग में जन्म लेने वाले हो। विनाश का साक्षात्कार हुआ, इसका मतलब दुनिया का विनाश नजदीक है। और स्थापना का साक्षात्कार हुआ सतयुग के रूप में, इसका मतलब ब्रह्मा के व्यक्तित्व को ब्राह्मण बने के रूप में ब्राह्मण धर्म की स्थापना का कार्य संपन्न करना। चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि राम और कृष्ण अपने सहयोगियों के साथ संबंध होकर के कॉम्बिनेशन जब होता है स्वभाव संसार का तो वो विष्णु बन जाते हैं। विष्णु का मतलब कोई ये नहीं कोई चार भुजाओं का व्यक्ति होता है। भुजा माने मददगार, हेल्पर। तो विष्णु के रूप में कितने हेल्पर हुए? राम, कृष्ण और उनकी सहयोगी शक्तियां। राम की सहयोगी शक्ति सीता और कृष्ण की सहयोगी शक्ति है राम। संगमयुग में उनके नाम हुए ब्रह्मा के साथ सरस्वती और शंकर के साथ पार्वती। ये चार आत्माओं के स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन ये विष्णु की प्रत्यक्षता होगी। तो तीन देवताएं हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो ब्रह्मा की यज्ञ कब पूरी होती है? आदि ब्रह्मा यानी अव्यक्त ब्रह्मा, ऊंची स्टेज वाला ब्रह्मा वो कब प्रत्यक्ष होता है? 76 में। यानी राम वाली आत्मा राम बाप को पहले प्रत्यक्ष होना है, पहले बाप प्रत्यक्ष हो फिर बच्चा प्रत्यक्ष हो। तो राम बाप के द्वारा जो राम बाप प्रजापिता का पार्ट बजाने वाला है, जिस पिता ने आत्माओं के पिता ने पहले प्रवेश करके बीज रोपण किया, ज्ञान का बीज डाला ब्रह्मा साकार ब्रह्मा, तो वो हुई साकार माँ और वो हुआ निराकार बाप। निराकार का बाप मतलब ये नहीं कि ज्योति बिंदु बाप शिव, मनुष्य आत्माओं का पिता, जो निराकारी बीज रूपी स्टेज में ज्ञान लेने के बाद तुरंत स्थिर हो जाता है। तो ज्ञान की भी संपन्न स्टेज होती है, यदि के आज में साक्षात्कार हुए ज्ञान नहीं और प्रजापिता में प्रवेश करके जो साक्षात्कार का ज्ञान दिया, वो देने वाला सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु था। राम वाली आत्मा में वो ज्ञान नहीं था, परिपक्व स्टेज में नहीं था। वो परिपक्व स्टेज में ज्ञान तब होता है जब आत्मा को अपने स्वरूप का पता लग जाए, निश्चय हो जाए, हु एम आई, मैं आत्मा कौन। तो राम वाली आत्मा को पहले पहले कब पता चला, कब निश्चय हुआ कि मैं आत्मा अमुक नारायण बनने वाली आत्मा जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, कब पता लगा। तो राम वाली आत्मा को पता चलेगा तो ऐसा तो है नहीं कि बाप अकेले ही आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि मार्ग ही कौन सा है, वृत्ति मार्ग। अपनी भारतीय परंपरा में कोई भी अनुष्ठान तब तक सफल नहीं होता जब तक पत्नी के साथ गांठ बांध करके कोई कार्य संपन्न नहीं किया जाता। अकेले कोई अनुष्ठान सफल नहीं होता। तो यह है बुद्धि रूपि का भाई समझी, कृष्ण बुद्धि की बात, बुद्धि के आधार पर, दिल और दिमाग के आधार पर राम सीता वाली जो आत्माएं हैं उनको ये पक्का निश्चय बुद्धि में बैठ जाता है कि मैं नारायण बनने वाली आत्मा हूँ अथवा मैं जो लक्ष्मी बनने वाली आत्मा हूँ। उनको जितना पक्का निश्चय होता है उतना और कोई दूसरे ब्राह्मण को निश्चय हो नहीं सकता। और निश्चय बुद्धि विजय हर कार्य में विजय युद्ध ही करी, ये इस बात की निशानी है। जिसको जितना निश्चय होगा वो जिस कार्य में कदम बढ़ाएगा उस कार्य में उसकी विजय निश्चय। वो दोनों ही आत्माएं लक्ष्मी और नारायण, पति की नहीं, संगम युग के लक्ष्मी नारायण, उनको अपने स्वरूप की प्रत्यक्षता 76 में होती है, होता है। उनको ये एहसास नहीं होता है। ये जैसे बच्चा पैदा होता है तो पहले पहले किसको पता चलता है, ये परिवार वाले होते हैं, घर वाले नजदीकी लोग होते हैं, समीप के लोग होते हैं, घर वाले हैं, गांव पड़ोस के लोग हैं, उनको पहले पता चलता है कि बच्चा पैदा हुआ। तो ऐसे ही बच्चा किसी रूप जन्म की भी बात, जो नजदीक वाली आत्माएं हैं ब्राह्मण कुल में वो पहले पहचानती है तुम्हें वाकई ये आत्मा लक्ष्मी बनने योग्य, ये आत्मा नारायण बनने योग्य, यही आत्मा नारायण की, यही आत्मा लक्ष्मी, लक्ष्मी का पाठ बजाने वाली, उसके पुरुषार्थ के आधार पर उनको ये साक्षात्कार होता है, बुद्धि का साक्षात्कार होता है। बात चल रही थी तीन कर्तव्यों की, आत्मा के भी तीन कर्तव्य, तो परमात्मा के भी तीन कर्तव्य और तीन कार्यकर्ता। तो परमात्मा शिव के तीन कार्यकर्ता ब्रह्मा, विष्णु और संगम। तो ब्रह्मा कितने हो गए, ब्रह्मा हो गए दो, एक व्यक्त और एक अव्यक्त। क्योंकि ब्रह्मा को विष्णु कहा गया है, नित्य ब्रह्मा का मतलब है प्रकृति रूपी शरीर प्लस सोल। ये शरीर और सोल दोनों मिलकर के बनते हैं नित्य ब्रह्मा। तो वो व्यक्त ब्रह्मा तो खलास हो गया तथा कथित ब्राह्मणों की नजर में, जो व्यक्त ब्रह्मा था वो अब है कि वो व्यक्त ब्रह्मा है या नहीं है, कहाँ है, कैसे है, मुरली में पढ़ो, मुरली में पढ़ रहे हैं, मुरली में है वो व्यक्त ब्रह्मा है। और फिर अव्यक्त ब्रह्मा कौन से, वही अव्यक्त ब्रह्मा वही व्यक्त ब्रह्मा, दोनों एक ही है। अभी तो बताया व्यक्त ब्रह्मा की स्टेज ऊंची, अव्यक्त ब्रह्मा की स्टेज ऊंची, अव्यक्त ब्रह्मा की स्टेज ऊंची, अव्यक्त माने आकारी, यानी साकारी दुनिया को उसका कनेक्शन नहीं है, उसकी बुद्धि का कनेक्शन इस साकार दुनिया से नहीं है। ऐसे नहीं कोई ऊपर बैठने वाला है, नहीं, ऐसी ऊंची स्टेज में रहने वाला है और स्थाई स्टेज में रहने वाला है कि उसका स्पर्श की दुनिया वालों से कोई संबंध नहीं, देह के रिश्तों से कोई संबंध बुद्धि का नहीं, आत्मिक संबंध है लेकिन बुद्धि का संबंध नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं कि उसको देह नहीं है, शंकर को फरिश्ता दिखाते हैं, तो क्या शंकर फरिश्ता है, सूक्ष्म बदन में रहने वाला है, तो उसका चित्त मंदिरों में कहाँ से आ गया है? अगर वो ऊपर ही रहने वाला है तो मंदिरों में चित्त कहाँ से आया, चित्र तो चरित्र की यात्रा है ना, तो उसका चरित्र ऐसा चरित्र उसे चित्र में दिखाया गया है, जैसे इब्राहिम बुद्ध है, महात्मा बुद्ध का चेहरा देखो, क्राइस्ट का चेहरा देखो और गुरु नानक का चेहरा देखो, परिस्थाई स्टेज देखने में आती है नहीं, ऐसे लगता है कि जैसे आत्मा ऊपर परम धाम से अभी अभी उतरी उसी स्टेज में, ऐसे ही शंकर का तो सबसे ऊंचा स्वरूप है, उसको तो दो छोट, जैसे शंकर तो लास्ट स्टेज, विष्णु से भी ऊंची स्टेज, तीन पुरियों ने सबसे ऊपर किसको दिखाया, शंकर, वो तो शंकर का तो पांच ही मुरली में बहुत वंडरफुल बता दिया, मुरली क्या बोला, शंकर का ऐसा वंडरफुल पार्ट है जो तुम बच्चे भी समझ न सको। तो इसका मतलब है कि बच्चों की जब संपूर्ण स्टेज होगी लास्ट में, तभी पूरा पूरा शंकर के पार्ट को, शंकर के स्वरूप को समझ सकेंगे, तब तक कुछ न कुछ नित्य अनित्य के चक्र चलते रहे। तो शंकर की तो बात अभी नहीं हो रही, बात किसकी हो रही है, ब्रह्म ज्ञान चंद्रमा की। तो ज्ञान चंद्रमा के रूप में पार्ट बजाने वाले भी दो व्यक्ति को कौन कौन से है, एक आकारी और एक साकारी। अब साकारी जो है वो भी बता दिया, वो भी दो है कि एक, साकारी ब्रह्मा यानी व्यक्त ब्रह्मा, उसमें दो रूप है या एक रूप है, दो रूप, कौन कौन से दो रूप है, जोर से बोलिए, नहीं अभी बताया, दो रूप प्रवृत्ति, जैसे आत्मा शरीर की प्रवृत्ति है वैसे ही नहीं, व्यक्त ब्रह्मा के भी दो रूप, एक जड़ प्रकृति का बना हुआ शरीर और एक चैतन्य आत्मा, क्या आत्मा प्लस पांच तत्वों का, पांच चिकित्सा के संघात का बना हुआ शरीर, प्रकृति के पांच तत्वों से बना हुआ सबसे सुंदर चोला किसका होता है, मनुष्य का। तो प्रकृति का जो प्रकृति तो बहुत ज्यादा सुंदर है, देखो सचिव में भी प्रकृति तत्व प्रधान थी, अब कितनी सुंदर थी, और जब तमो प्रधान दुनिया बन गई है तो भी प्रकृति का सौंदर्य कोई सब नहीं है। तो प्रकृति पांच तत्वों का वो पुतला जिसे व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है, उसमें शरीर भी है साक्षात आत्मा भी तो शरीर अलग कर दिया जाए और आत्मा अलग कर दी जाए तो कार्य संपन्न होगा, कार्य संपन्न नहीं हो सकता। तो यहाँ भी ऐसे ही प्रकृति का जो बीज है सारे विश्व के अंदर उसका बीज रोपण होता है एक स्थान से। वो कौन सा स्थान? ऐसे तो प्रकृति अनादि है, वो कभी उत्पन्न नहीं होती, वो कभी मरती नहीं। अपने भारतीय परंपरा में भारतीय जो शास्त्र हैं उनमें उसको आदि शक्ति के नाम से गाया गया, क्या आदि देवी। तो आदि देवी का आदि रूप कहां से शुरू हुआ, वो स्थान कौन सा है? नगर से, वो स्थान है नगर। नगर कोई स्थान है क्या? स्थान की बात कर रहा हूँ। आदि देवी कहाँ से प्रत्यक्ष हुई? कोई ऐसा शहर है नहीं, कोई ऐसा शहर है जिस शहर का प्रभाव सारी विश्व पर पड़ता है? सब धर्म के लोग अपना तख्ता जमाते हैं, मधुबन में तख्ता जमाते हैं, दिल्ली, दिल्ली का तख्ता एक ऐसा तख्ता है शासन सत्ता का जिसमें हर धर्म ने राज्य किया। तो धर्म सत्ता का और राज्य सत्ता का आदि से लेकर क्योंकि आदि से लेकर के और आज अंत तक भी सबसे बड़ा गढ़ हर धर्म का कौन सा बना हुआ है? दिल्ली। दिल्ली में जितनी सब धर्मों की आत्माएं ज्यादा परसेंटेज में होंगी इतनी दुनिया का और कोई भी शहर नहीं होगा जिसमें हर धर्म की ज्यादा से ज्यादा आत्माएं परसेंटेज में मौजूद हो। तो दिल्ली है प्रकृति का केंद्र स्थल, सारे दिल्ली का प्रभाव सारे भारत पर पड़ता है, सारे विश्व पर पड़ता है। भारत का वातावरण देखना हो तो कहाँ से देख लो? दिल्ली। सारे भारत की गतिविधियों को जानना हो तो कहाँ से जान लो? दिल्ली। इसलिए बाबा ने अव्यक्त वाणी में बोला दिल्ली का परिवर्तन सारे विश्व का परिवर्तन। तो दिल्ली है प्रकृति का केंद्र स्थल। प्रकृति अर्थात पांच तत्वों का बना हुआ शरीर, जैसे पांच तत्वों से शरीर बनता है वो प्रकृति का सबसे श्रेष्ठ पुतला। तो कोई ऐसा भी पुतला है चैतन्य जो उस जड़ प्रकृति के मन में रखा गया है? क्या कुछ बात है, जैसे सूर्य स्थूल भी है तो आध्यात्मिक भाषा में तो चैतन्य सूर्य भी होना चाहिए कि नहीं? कौन है? ज्ञान सूर्य परमात्मा। चंद्रमा है स्थूल तो उसके माइंड में तो चैतन्य चंद्रमा भी है। कौन है? ब्रह्मा है ना, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा यही चतुर्थ की सोच। कलाएं घटती है और कलाएं पूरी होती है, संपन्न होती है, सोलह कला संपूर्ण बनता है। तो ऐसे प्रकृति प्रकृति का भी रूप है चैतन्य, लेकिन वो जड़ प्रकृति अपने तांत्रिक स्टेज में भी होती है एक टाइम पर और अपने सात्विक स्टेज में भी बनती है एक टाइम पर। तो इसलिए वाणी में बाबा ने बोला है कि प्रकृति का परिवर्तन सारे विश्व का परिवर्तन। जब तक प्रकृति को परिवर्तन नहीं किया है तब तक विश्व का परिवर्तन नहीं हो सकता। करते हैं, जब उनकी आत्मा ही पूज्य बन जाए तो पूज्य नहीं कहे जाएंगे। आत्मा पवित्र बन गई, जैसे सन्यासी गर्भनाथ छोड़ देते और उन्होंने निश्चय कर लिया कि हम आजीवन पवित्र रहेंगे, तो उनकी आत्मा तो उस समय पवित्र हुई है, लेकिन शरीर अपवित्र है, पवित्र नहीं है। तो सन्यासियों की मूर्ति की पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं बनाए जाते, तो संपन्न निश्चय के कब कही जाए देवताओं की, जब शरीर भी लेकिन पांच प्रकृति के तत्वों का बना हुआ शरीर वो भी सबको प्रधान बने और आत्मा भी सबको प्रधान बने, दोनों में से पहले सबको प्रधान कौन बनेगा? आत्मा पहले सबको प्रधान बनेगी, और पांच जड़ तत्वों से बना हुआ शरीर बाद में सबको प्रधान बनेगा। क्यों ऐसा क्यों? जब प्रकृति के ऊपर इतना जोर दिया बाबा ने कि प्रकृति का परिवर्तन सारे विश्व का परिवर्तन, जब तक प्रकृति को परिवर्तन नहीं किया है तब तक विश्व का परिवर्तन नहीं हो सकता। प्रकृति सूक्ष्म भी है, प्रकृति स्थूल भी है, प्रकृति कहते हैं मनुष्य के भाव स्वभाव को, मनुष्य का जैसा भाव स्वभाव बिगड़ता जाता है वैसे वैसे ये स्थूल प्रकृति भी प्रकृति जलवायु अपने ये भी बिगड़ते जाते, और मनुष्य का भाव स्वभाव रूपी प्रकृति जब सुधरती है तो ये स्थूल प्रकृति भी सुधर जाती है। कटिंग में लक्ष्मी नारायण को कैसा माहौल मिलेगा, प्रकृति का कैसा वातावरण मिलेगा? सबको प्रधान नदियां उछाल नहीं खाएंगी, हवा तूफान नहीं लाएगी, अग्नि ज्वालामुखी नहीं छोड़ेगी, तो कैसा सबको प्रधान माहौल मिलेगा? क्योंकि आत्मा सबको प्रधान है, तो प्रकृति के पांच तत्व भी पांच में सबको प्रधान बनते हैं। तो प्रकृति में पहला तत्व कौन सा है? जो मुख्य तत्व है, प्रकृति के पांच तत्वों का सबसे मुख्य तत्व कौन सा है? पृथ्वी। तो ये पृथ्वी माना धरणी, एक स्थूल धरणी है, जैसे कहते हैं भारत माता, तो क्या जमीन को सुधारने की बात है? भारत शिष्टाचारी, भारत भ्रष्टाचारी, तो क्या जमीन शिष्टाचारी भ्रष्टाचारी कही जाती है कि मनुष्य शिष्टाचारी भ्रष्टाचारी होता है? मनुष्य की बात, यानी भारत माता जब कहा गया तो उसमें जरूर कोई दो शक्तियां समाई हुई, दो आत्माएं, भारत माता, उसमें माता की बात कर रहा हूँ, जरूर है कि भारत माता है तो पिता भी होगा, लेकिन अभी मैं भारत माता की बात हो रही हूँ। भारत माता कहा तो जरूर उसमें शरीर तत्व भी है, पांच तत्व का पुतला भी है, और उसमें आत्मा भी है। तो अब भारत माता कह दो या व्यक्त ब्रह्मा कह दो, तो व्यक्त ब्रह्मा आत्मा की विगत तो नहीं हुआ ना, तो संपन्न निश्चय का व्यक्त ब्रह्मा कब कहा जाए? पैंती शिष्य की जो बात थी वो बात तो थी प्रजापिता के लिए, प्रजापिता ब्रह्मा यानी आदि वाली आत्मा, ब्रह्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रह्मा अलग और प्रजापिता अलग, ये दोनों आत्माएं अलग अलग है, गलती से इनको एक समझ लिया गया कि प्रजापिता ब्रह्मा एक ही है, नहीं, जैसे माँ बाप कहा जाता है तो माँ बाप एक नहीं है दो है, दो बाप अलग होता है माता अलग होती है, तो ऐसे ही प्रजापिता ब्रह्मा जिनके साथ प्रजापिता का चिन्ह लगा हुआ है वो व्यक्ति तो अलग, और फिर को ब्रह्मा वो अलग, अगर अलग नहीं होता तो मुरली में बाबा ऐसे क्यों कहते कि ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा धर्म की स्थापना करता हूँ, रचना करता हूँ, और प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वर्षा देता हूँ? तो दो काम हो गए, दो बातें हो गई ना, दो व्यक्तित्व हो गए ना, तो यहाँ बात हो रही है ब्रह्मा की, ब्रह्मा के भी दो रूप, व्यक्त ब्रह्मा और अव्यक्त ब्रह्मा, वस्तु है, अनुपासन है ब्रह्म, वो तो रूप में समझ लिया, लेकिन चित्र में तो चार मुख वाला ब्रह्म दिखाते, ब्रह्मा के कितने मुख दिखाते, चार मुख, और यहाँ तो एक ही मुख वाला ब्रह्मा हमने देखा, तो संपूर्ण ब्रह्मा देखा है या अपूर्ण ब्रह्मा देखा, कौन सा ब्रह्मा को देखा, संपूर्ण संपूर्ण चार मुख वाला होता है, अपूर्ण ब्रह्मा को देखा, क्योंकि संपूर्णता के कितने बनते हैं, तो जैसे चार भुजाओं का विष्णु है वैसे चार मुख वाला ब्रह्मा भी है, जो हमारे बुद्ध रूपी तीसरे नेत्र में पहले प्रत्यक्ष होने, इस नेत्र में प्रत्यक्ष होगा तो क्या प्रयुक्त चित्र भी बनाए जाए, और हम ही बनाएंगे, ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि में जो बात अभी प्रत्यक्ष होगी वही ब्राह्मण बच्चे वहाँ जिसे तैयार करेंगे, तो चार आत्मा हो गई, व्यक्त ब्रह्मा के रूप में जो विशेष आत्मा कौन कौन सी, एक आत्मा आत्मिक रूप में पाठ बजाने वाली आत्मा जिसे वैष्णव देवी भी कहा जाता है, लास्ट देवता कौन सा है जो बात में प्रत्यक्ष होना है, बाबा कहते हैं मुरली में सीधा सीधा नहीं समझाओ, ब्रह्म द्वारा स्थापना विष्णु द्वारा पालना शंकर द्वारा विनाश, ये राग है क्या समझना चाहिए, ब्रह्म द्वारा स्थापना शंकर द्वारा विनाश फिर विष्णु द्वारा पालना, इसका मतलब लास्ट में विष्णु का पाठ प्रत्यक्ष होगा, है तो तीनों बाप के बच्चे कथा कथे, तो ब्राह्मणों ने फिर पार्टी बाजी बनाई थी, ब्रह्मा की पार्टी, शंकर की पार्टी और विष्णु की पार्टी, और ये पार्टी बाजियां कहां से शुरू हो गई, एक परिवार एक बाप के बच्चे, तो ये है देहधारी धर्मगुरु अलगाववादी जिनके हिसाब चलते, यहाँ कोई अलगाव की बात बात नहीं हम ब्राह्मणों के अंदर, व्यक्त ब्रह्मा के दो रूप बता रहे थे, एक शरीर और एक आत्मिक तेज, वो आत्मिक तेज जो आज से लेकर के अंत तक भी आखिरी जन्म तक भी आत्मिक तेज में रहती है, आत्मिक तेज वो कौन सी आत्मा है जो आज से लेकर के अंत तक भी उसी तेज में रहती है, सिर्फ राम वाली आत्मा, अगर अकेली राम वाली आत्मा होती तो सैनिक शक्ति में लक्ष्मी नारायण दो का नाम क्यों दे दिया, हमारा तो है प्रवृत्ति नाम, वो बाप बाप नहीं जो माँ को आगे ना बढ़ाए खुद आगे बढ़ जाए, इसलिए बाबा ने किसको आगे रखा, माता गुरु आगे, माताओं को पहले आगे करना, पहले माताओं को आगे बढ़ाए, यह भी ऐसे ही एडवांस पार्टी में कोई दूसरी बातें नहीं है, एकदम तो सारे वही है लेकिन तरीका अलग है चलन का, माताओं को ही आगे बढ़ना, माता गुरु को ही पहले प्रत्यक्ष करना है, इसलिए अगस्तवाणी ने बोला हुआ भारत माता से तक की अवतार अंत का यही नारा है, अंत का वो शिव शक्तियाँ शिव शक्तियों के रूप में कब प्रत्यक्ष होंगी, तो वो आत्मिक रूप में पाठ बजाने वाली आत्मा और वो पृथ्वी का पांच तत्वों का सुंदर पुतला के रूप में पाठ बजाने वाली आत्मा दोनों मिलकर एक हो जाए, ब्रह्मा को विष्णु ब्रह्मा को बताए, एक व्यक्त ब्रह्मा नीचे स्टेज वाला, एक अव्यक्त ब्रह्मा ऊंची स्टेज वाला, सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर आए का मतलब कोई कोई ऐसा सूक्ष्म शरीर की बात, सूक्ष्म शरीर भी होता है लाइट का शरीर जिसे बाबा कहते हैं, लेकिन लाइट कोई ऐसी चीज नहीं जो उन आंखों से देखने वाली लाइट हो, वो तो ज्ञान की लाइट है, ज्ञान की लाइट का शरीर है, तो अव्यक्त ब्रह्मा जो लाइट का शरीर दिखाया जाता है वो सूक्ष्म बतलवासी ब्रह्मा, सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा जिनको नाम दिया है वो सिर्फ आत्मा होगी या सूक्ष्म शरीर होगा, सूक्ष्म शरीर का आकार अलग और बिंदु रूप आत्मा का स्वरूप अलग। तो सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा में भी आत्मा भी है तो सूक्ष्म शरीर भी है। रात को सोते समय जब आत्मा स्वप्न में जाती है तो चारों तरफ दुनिया की चक्कर लगाती है, कौन सा शरीर लेकर के जाती है? सूक्ष्म शरीर। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि वो सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा उसमें आत्मा सिर्फ है या शरीर भी है? दोनों, सूक्ष्म शरीर भी है तो आत्मा भी है। तो ये दो अलग हो गए, ये दो सोल अलग हो गए। कौन कौन सी दो सोल? नहीं सुप्रीम सोल नहीं, सुप्रीम सोल तो अलग अव्यक्त ब्रह्मा, उसमें भी दो सोल हुई, एक शरीर और एक आत्मा, उनमें एक राम और एक ब्रह्म। ब्रह्मा है सूक्ष्म शरीर धारी, सूक्ष्म शरीर कहा जाता है ना, लेकिन उसमें भी आत्मा उसकी कौन है? राम। हाँ ये दीजिए, आपके ही जिसने बीजारोपण किया था। तो राम और कृष्ण ये दो आत्माएं जो है वो सूक्ष्म स्टेज में, राम वाली आत्मा तो साकार शरीर से भल है ब्राह्मण बच्चे के रूप में, कोई ब्राह्मण बच्चा है, लेकिन वो ब्राह्मण बच्चा ऐसा है जिसने अपने शरीर को तन को मन को और धन को किसे अर्पण कर दिया? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा को अर्पण कर दिया तो तन किसका हो गया? ब्रह्मा का हो गया। तो ब्रह्मा की सोल उस तनधारी बच्चे में प्रवेश करती है, इसलिए शंकर के माथे पर चंद्रमा दिखाया। तो ये वो आत्मा नारी का स्वरूप है, आधा स्त्री आधा पुरुष, उसका मतलब कोई स्वरूप में नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता, लेकिन ये स्वभाव संस्कार की बात है कि उसमें पोलाइट रूप भी है तो पुरुष का सख्त रूप भी है। सख्त से सख्त पार्ट बजाने वाला भी है तो कोमल से कोमल पार्ट बजाने वाला भी है। नहीं तो अगर सख्त पार्टी बजाने वाला हो तो सब बच्चे भाग जाए, क्यों? क्योंकि बच्चों की स्टेज में और बाप की स्टेज में बहुत अंतर होता है। बाप तो बाप होता है और बच्चे बच्चे हो तो 76 में जो आत्मा प्रकट हुई लक्ष्मी और नारायण के रूप में, उनके साथ साथ दो आत्माएं और ऐड हुई पड़ी। लक्ष्मी नारायण का रूप हमने देख लिया, लेकिन उन्हें लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी में भी दो रूप हैं और नारायण में भी दो रूप हैं, एक पति भी नारायण बनने वाला और एक संगम में नारायण बनने वाला। लक्ष्मी में भी दो रूप हैं, एक संगम में, संगम में हाँ कंट्रोल करने वाली है सारे विश्व को, सारे जगत को कंट्रोल करने वाली, और एक सिर्फ स्वर्ग को कंट्रोल करने वाली, स्वर्ग की कंट्रोलर। तो स्वर्ग की कंट्रोलर का नाम है लक्ष्मी, स्वर्ग की जो देवी है उसका नाम क्या है? लक्ष्मी। वो है आज के अंत तक आत्म की स्टेज में रहने वाली, और जिसकी पूजा भी आदि से होती है द्वापर युग से, और उसका एक साकार स्वरूप भी है, गर्भमय स्वरूप लेकिन सौंदर्य का आधार, प्रकृति की सुंदरता, प्राकृतिक घटा, जिसको विदेशी लोग भी आज तक मानते हैं, परमात्मा बाप को मानते हैं और गॉड फादर को मानते हैं, लेकिन गॉड मदर को नहीं मानते, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो प्रकृति ही उनकी गॉड मदर, इसलिए प्रकृति पति भी कहा जाता है। तो प्रकृति भारिया हुई है, लक्ष्मी पति भी कहा जाता है तो लक्ष्मी भारिया हुई है, माया पति भी कहा जाता है तो माया भारिया हुई है, माया के लिए क्या बोला? माया नहीं बेटी, क्या बात, बेटी को गालियां देके कोई बना लेगा? तो शास्त्र में गायन है कि ब्रह्मा और उनकी बेटी सरस्वती, तो सरस्वती देवी कही गई, टाइटल दिया है जगदम्बा का, लेकिन वास्तविक जगदम्बा सरस्वती तो बाद में आई, और राधे बाद में आई है कि नहीं? उससे भी कहे पहले कोई माता थी है कि नहीं, जो मम्मा बाबा को ही कंट्रोल करती थी, मम्मा बाबा को भी दिल कराती थी, शिक्षण देती थी, डायरेक्शन देती थी, उनमें शोभा प्रवेश करते थे, तो वो ही नहीं आदि माता है। उनमें एक है प्रकृति, प्रकृति माता व्यक्त का सौंदर्य रूप, और एक है नहीं माता तो दो नहीं, और एक नहीं लक्ष्मी, हाँ तो प्रकृति जो है उसको दुर्गा के रूप में दिखाया गया, सौंदर्य की देवी, प्रकृति की देवी है, प्रकृति की देवी, उसकी सवारी किसके ऊपर दिखाई गई? शेर के ऊपर, वो शेर क्या है? प्रकृति का जो हाँ वहीं पर दिखाया गया, क्या बताए भयंकर रूप, भयंकर रूप, अच्छा आप बोलते हैं जय जय भयंकर रूप, तो प्रकृति विकराल रूप भी धारण करती है, लक्ष्मी विकराल रूप धारण नहीं करती, प्रकृति का विकराल रूप बाबा ने सबसे ज्यादा भयंकर बताया, महाभारी महाभारत लड़ाई इतनी भयंकर नहीं है, खून की नदियां बहेंगी लेकिन इतना विनाश नहीं होगा उसमें, क्योंकि तो वो भारत में होना है, दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा विनाश किसके द्वारा होगा? प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के पांच तत्व इतना भयंकर रूप धारण करेंगे कि ये पृथ्वी भी तोड़ने लगेगी, और मकान सब गिर जाएंगे, और सबसे ज्यादा विनाश किस बात से होगा? प्रकृति के विकराल रूप धारण करेंगे, तो वो प्रकृति तो जड़ विनाश होगा, जड़ प्रकृति के विकराल रूप धारण करने से, लेकिन जड़ प्रकृति को भी चलाने वाली कौन? चैतन्य प्रकृति, प्रकृति का चैतन्य स्वरूप जिसे देवी के रूप में दिखाया जाता है, दुर्गा देवी, दुर्गुणों को दूर करने वाली, दुर्गुणों को धारण करने वाली उपाय की दुनिया से सफाया कर देती है, जाओ परंपरा, तो ब्रह्मा दो, व्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त ब्रह्मा, व्यक्त ब्रह्मा में भी दो रूप,